नमस्ते सरस्वती देवे,
नमस्ते सरस्वती देवे,
गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेषा शून्यवादी
पश्चात देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सोनप्रयाग के क्षेत्र में मंदाकिनी के तट के ऊपर केदार खंड में आज प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। कुछ भाग्यशाली परम वैष्णव भगवान केदारनाथ का दर्शन करके आए हैं, उनको दर्शन की बधाई। कुछ यहां बैठकर निर्जल एकादशी का सुखपूर्वक व्रत संपन्न किया और प्रातः द्वादशी के मुहूर्त में पारण करके अनंत कोटि जन्मों के पाप राशि को क्षय करके पुण्य को अर्जन करके भागवत कथा सुनने में उनको प्रवेश मिला है। उन सबका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है, उनका भी अभिनंदन करते हैं। तो कल हम श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में जहां कपिल देव से माता देवहूति ने 7वें श्लोक से प्रश्न पूछे हैं और उन प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य है कि भौतिक जगत में इंद्रियां इतना त्रास देती हैं कि हम उससे बिल्कुल परेशान हो गए हैं। अब आप का अवतार ही अंधकार को नाश करने के हुए लिए हुआ है और ये सारे इंद्रियों के भोगों के पीछे अज्ञानता के कारण आदमी भागता है। तो अब आप कृपा करके मेरे इस अंधकार का नाश कर दीजिए, और आप तो पारगामी हैं, आप हमको भौतिक जगत की सीमा से पार करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करा दीजिए। वैसे ये माया आपकी है, हमने भोग करने की भावना की इसलिए हम इसमें फंस गए हैं, अभी आपका शरण लेते हैं, आप कृपा करके हमको इससे मुक्त कराइए। तो माता देवहूति की ऐसी प्रार्थना को सुनकर कपिल देव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि पुरातन योग जो पहले मैंने ऋषियों को बताया था वही माता मैं आपके योग कल्याण के लिए योग बताता हूं। तो कल हमने 14 श्लोक तक किए थे, 15 श्लोक से आगे अब प्रस्थान करेंगे। आइए 15वां श्लोक पढ़ते हैं। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेशो सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। ये श्लोक का भाव ऐसा है जैसा 6 अध्याय भगवत गीता में एक श्लोक है कि जिसका मन स्वतंत्र है उसका मन शत्रु है और उसको बंधन में डालता है, और जिसका मन वश में है उसका वो मित्र है और उसको मुक्त कराता है। तो ये श्लोक जो है 6 अध्याय के उस श्लोक से मिलता जुलता है। अब चेतः शब्द है, चेतः शब्द का अर्थ चेतना है, और इस चेतः शब्द को ध्यान में रखते हुए एकदम चेतो दर्पण मार्जन का ध्यान रखो। ये चेतः शब्द जो है चेतो दर्पण मार्जन की भाव में है कि अनादिकाल से हृदय के ऊपर जमे हुए मैल को धोना पड़ेगा। तो कैसे धोना पड़ेगा? तो चेतो खलो अस्य बंधाय, जब तक हमारी चेतना भौतिक पदार्थों में लगी हुई है वो ही असल में हमारा बंधन है। अब चेतना को मटेरियल कॉन्शियसनेस कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है वो शुद्ध चेतना है और भौतिक कॉन्शियसनेस वो अशुद्ध चेतना है। तो ये अशुद्ध चेतना की बात कर रहे हैं, पॉल्यूटेड इंटेलिजेंस, पॉल्यूटेड कॉन्शियसनेस। मुक्त है चात्मनो मतम, और उसको मुक्त मानेंगे, आत्मनो मतम मेरा मत है, माता जी को कहते माता जी मेरा मत है, अगर जीव इस दूषित चेतना का परिमार्जन कर दे, धो ले, साफ कर दे तो मुक्त हो जाएगा। तो बंधन, अच्छा बंधन क्या करता है, किस चीज से बंधा हुआ है? अगर माता जी पूछती है तो कहता है गुणेशु सक्तम बंधाय। गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण, और गुण का दूसरा अर्थ है रस्सी। कौन सी रस्सी ने हमको बांधा है इस दुनिया में? 3 गुणों की रस्सी ने बांधा है। और सक्तम का मतलब आसक्ति, तो 3 गुणों में आसक्ति, 3 गुणों में आसक्ति का मतलब है 3 गुणों के स्वभाव के कारण उन चीजों में आसक्ति। गुणों में आसक्ति नहीं होती है, गुण से जो स्वभाव बनता है, जैसे तमोगुण का स्वभाव होता है आलस करना, सोते रहना, प्रमाद करना, तो उसमें आसक्ति होती है, उठने की इच्छा नहीं है, सोए हुए, काम करने की इच्छा नहीं है, पड़े हुए हैं, तो ये हो गई आसक्ति तमोगुण की। रजोगुण की आसक्ति होती है लोभ में, मनो आत्मा के बंधन का कारण है। अब मुक्त कैसे होंगे? तब कहते रतम वा पुंसी मुक्तये। पुंसी का मतलब परम पुरुष भगवान, और रतम का मतलब रता, रता प्रेम का, प्रेम की परिभाषा है रति। जैसे हमारे रूप गोस्वामी की है, भक्ति के मार्ग में आदो श्रद्धा से लेके रति, रति के बाद भाव आता है, तो आसक्ति रति, रति का मतलब किसी काम में सुख आने लगे, अच्छा लगने लगे, तो तो ऐसे अगर रताम, प्रभुपाद ने शर्त शब्द बहुत सरल लिखा है अटैचमेंट, और रति शब्द जो है ना ये सामान्य साहित्य में रति कहते हैं, नौजवान लड़का और लड़की बैठ के बातें करते हैं थकते नहीं है, इसको बोलते हैं रति। ऐसी भगवान की कथा में रति हो जाए, भगवान के भक्तों के संग में रति हो जाए, भगवत कीर्तन में रति हो जाए, तो मुक्त है, तो एकदम मुक्त हो गया। तो जैसे चाबी एक ही होती है, एक तरफ घुमाने से दरवाजा बंद होता है, दूसरे तरफ घुमाने से दरवाजा खुल जाता है। ऐसे मन संसार की तरफ घुमा देंगे तो बंधन हो जाएगा, और मन को भगवान की तरफ घुमा देंगे तो खुल जाएगा। चाबी हमारे हाथ में है, अब किस तरफ घुमाना है, आप देख लीजिए दिन भर में चाबी कैसे घुमाते, जब बाहर जाते हैं दरवाजा बंद करते हैं, आते हैं तो खोलते हैं। तो ये हमारा जीवन में ऐसे ही काम चल रहा है, मन को कभी मंदिर में जाते हैं तो भगवान की तरफ लगाते हैं, और प्रायः संसार में जाते हैं तो संसार की तरफ लगाते हैं। तो ये बंधन का कारण और मुक्ति का कारण हमारी अपनी चेतना है, जो गुणों से प्रभावित है, प्रदूषित है। तीनों गुणों का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, कॉन्शियसनेस के ऊपर। कॉन्शियसनेस किसकी, आत्मा की। आत्मा का सिम्टम है कॉन्शियसनेस, आत्मा का पहचान है कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस के ऊपर प्रभाव किसका पड़ा, तीन गुणों का। तीन गुणों के प्रभाव से हमारा स्वभाव बना। मेरा फोन है, ज्योति कर रही। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, की दिखाए। हेलो हरे कृष्णा। हाँ की दी? हाँ तो जाओ दाना, ठीक है। हरे कृष्ण सारी। सो ये सरल कपिल देव ने कहा कि माताजी बंधन का कारण क्या है और मुक्ति का कारण क्या है। अब हमारे हाथ में है कि हम बंधन में जाना चाहते हैं कि मुक्त होना चाहते हैं। बाल इज इन अवर कोर्ट कहते हैं। अब ऐसे कि भगवान पुलिस वाला नहीं है कि जबरदस्ती किसी को कहे कि ऐसे करो या ऐसे करो। यही हमको स्वतंत्रता है केवल मानव जन्म में, पशु पक्षी के जन्म में नहीं है, और भारतवर्ष से बाहर है ही नहीं। यह स्वतंत्रता न तो देव लोक में है, और किसी लोक में भी यह स्वतंत्रता नहीं है, और किसी लोक में भी, किसी और जूनी में भी आत्मा को यह सौभाग्य प्राप्त नहीं है। ये केवल मानव जन्म में, और वो भी भारत वो भूमि में। तो इसमें भारत का ये अर्थ कब नहीं समझना कि जो अभी हमारा मानचित्र है भारत का, यही भारत है। नहीं, ये भूमि सारी जो खारे पानी के समुद्र से घिरी हुई है, इसका नाम भारत है। इसको पहले अजनाब वर्ष कहते हैं, कहते थे, और जब महाराज ऋषभदेव के पुत्र महाराज भरत यहां के राजा बने तो इस पूरे भारत वर्ष कहते हैं, जम्बू द्वीप का एक वर्ष जो खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है, इस पूरे को भारत वर्ष कहते हैं। ये भारत इतना टुकड़ा नहीं, इसको भारत खंड कहते हैं। भारत वर्षे भारत खंडे, ये भारत वर्ष का थोड़ा सा टुकड़ा है जिसको हम भारत खंड कहते हैं, लेकिन पूरी पृथ्वी का नाम भारत वर्ष है। और इसमें जन्म लेने वालों को इतनी स्वतंत्रता है कि अपने को बंधन में डाले या अपने को स्वतंत्र करें। प्रायः कई जन्मों से बंधन में ऐसे बंधे हुए होते हैं कि मुक्त होना हमारे अपने बस की बात नहीं, इतना आसान नहीं है कि हम अपने आप मुक्त हो जाएं। इसलिए चेतना महाप्रभु के चरितामृत के ये शब्द सार्थक समझने चाहिए। माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। माया मुग्ध जीवों को अपने आप कृष्ण का ज्ञान हो जाए यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। नो नो नो, वो किताब। माया मुग्ध जीवों को अपने आप हो जाए ज्ञान, यह संभव नहीं है। कृष्ण कृपा कहना, भगवान ने बड़ी कृपा की है, दिया वेद पुराण शास्त्र दिया है। बोला शास्त्र तो दिया, लेकिन शास्त्र समझाएगा कौन। तब कहते हैं तीन रूप से भगवान हमारी सहायता करते हैं। एक तो परमात्मा के रूप से हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे मित्र के रूप में हमें प्रेरणा देते रहते हैं। दूसरा अवतार लेके व्यास देव का शास्त्रों का निर्माण कर देते हैं। कपिल देव के अवतार में आके साक्षात ज्ञान देते हैं, कृष्ण के अवतार में आके भगवत गीता देते हैं, और तीसरा साधु गुरु के रूप में प्रकट होके शास्त्रों को समझा के भगवान की तरफ ले जाने का मार्गदर्शन करते। तीन रूपों से, स्वयं रूपे मतलब परमात्मा के रूप में, और अवतार के रूप में जैसे वेदव्यास का अवतार, कपिल देव का अवतार, श्री कृष्ण का अपना अवतार जिन्होंने हमको ये सब ज्ञान दिया, और तीसरा साधु गुरु के रूप में। इन तीनों की सहायता से हम इस बंधन से मुक्त हो सके। अपने आप नहीं हो सकते, बंधा हुआ व्यक्ति अपने आप को नहीं खोल सकता, जो खुला है वही खोल सकता है। हजार आदमी हो लेकिन सबके हाथ पांव बंधे हुए हो तो अपने आप को खोल नहीं सकते। एक बच्चा भी खुला हुआ हो तो सबको खोल सकता है। ऐसे जो सतपुरुष, साधु पुरुष, गुरुजन होते हैं, ये मुक्त होते हैं, तो वो एक गुरु लाखों को खोल सकता है क्योंकि वो खुला हुआ है, और लाखों अगर बंधे हुए तो एक दूसरे को नहीं खोल सकते। ये सिद्धांत ये है। तो अब इस श्लोक का भाव ये है, इस श्लोक का तात्पर्य बहुत सिंपल है। 16वें श्लोक को पढ़ते हैं। अहम मम अभिमान उथित्तये, अहम मम अभिमान उत्थय्य, काम लोभ आदिभिर मलयः, वीतम यदा मनःशुद्धम् अदुःखम् असुखम् समम् अब कहते हैं अहम मम एति अभिमान, मैं और मेरे का अभिमान, ये जहां से उत्पन्न होता था, उदित, उदित मतलब जहां से प्रकट होता है, ये अहंकार के मैं और मेरा हूं, अभिमान का मतलब अहंकार, ये झूठा अहंकार के मैं और मेरा हूं, इसके कारण क्या होता है, काम लोभ आदि भी, इसके लिए कामना उत्पन्न होती। कामना कौन से, काम कौन से गुण के प्रभाव से उत्पन्न होता है, रजोगुण समुद्भव, वही उद्भव शब्द यहां उत्थित है। रजोगुण से काम उत्पन्न होता है, काम पूरा नहीं होता है तो क्रोध होता है, रजोगुण से लोभ होता है, और लोभ रजोगुण का है, काम रजोगुण का है, आदि भी, आदि का मतलब क्रोध आदि, काम क्रोध लोभ मोह ये सब उसके बाद आदि भीर में बाकी सारे आ गए। मल ही इन सबको क्या कहा है, ये मल है, ये है मैल, किसके ऊपर, चेतना के ऊपर, ये चेतना के ऊपर मल है, जो चेतना दूषित है वो किसके कारण दूषित है, इन सारे भावों के कारण, और ये भाव कहां से आए, तीनों गुणों से आए। अब उनको क्या करो, वीतम, वीतम का मतलब निकाल के फेंक देना, छोड़ देना, वीतम, वीत राग भय क्रोधा ममया आश्रित, भगवत गीता में वीत, वीत का मतलब विशेष रूप से उसको तलांजलि दे देना, छोड़ देना, निकाल देना। यदा अगर कोई इसको छोड़ सकता है, मैं और मेरे के भाव को, झूठे अभिमान को, काम और लोभ आदि को कोई त्याग सकता है, अच्छा ये कोई त्यागे नहीं जा सकते, लिखा है वीत, यहां आगे आएगा, ये वीत नहीं हो सकता है, इसका सदुपयोग किया जा सकता है। जो चीज भी भगवान ने बनाई है संसार में उसका कोई ना कोई उद्देश्य है, बगैर उद्देश्य के नहीं है, क्रोध की भी जरूरत है, अगर क्रोध नहीं आए तो हनुमान लंका कैसे जलाए, अगर क्रोध नहीं होगा तो अर्जुन युद्ध कैसे करेगा, तो क्रोध आए तो किसके ऊपर आना चाहिए, पहले अपने ऊपर आना चाहिए कि मैं क्यों नहीं साधन ठीक कर रहा हूं, मैं क्यों नहीं उठ पा रहा हूं, मैं क्यों नहीं सत्संग कर पा रहा हूं, दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, अपने त्रुटियों को देखकर क्रोध करना चाहिए, और दूसरा क्रोध करना चाहिए भगवत विरोधियों के ऊपर। भगवत विरोधी जो भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में बाधाएं, उसके ऊपर क्रोध करना भी आवश्यक है। हनुमान का क्रोध, अर्जुन का क्रोध का सदुपयोग है। ऐसे लोभ भी खराब है संसार का, लेकिन हरि कथा का लोभ हो जाए, हरि भक्तों के संग का लोभ हो जाए तो ये लोभ खराब नहीं है। यहां तक के रूप गोस्वामी कहते हैं लोलोप्यम एकम, ये लोभ ही एकमात्र आपके अंदर भगवान को प्रेम का पाने का है तो भगवान मिलेगा। तो लोभ भी खराब नहीं है। कामाद गोपिया, यहां काम खराब बताए और गोपियां काम के भाव से भगवान को प्राप्त कर गई। द्वेष के द्वारा शिशुपाल ने प्राप्त कर लिया। भगवान की तरफ ये सब जो दोष हैं, ये मल तब हैं जब संसार में है, और यही चीजें भगवान की ओर हो जाएं तो वो पवित्र कर देंगी। तो वीत का यहां अर्थ है कि संसार से हटाना, इसका मतलब नहीं है खत्म हो जाएंगी कामना क्रोध, ये कभी खत्म होने वाले नहीं, इनको सही चैनल में डालना पड़ेगा, सही रास्ते में डालना पड़ेगा। मन शुद्धम, अगर मन शुद्ध हो गया तो। मन शुद्ध करने में बहुत समय लगता है, क्यों कि एक जन्म का इसके ऊपर कचरा नहीं है, मैल एक जन्म का नहीं है, अनंत कोटि जन्म के इसके ऊपर इंप्रेशन है, इसके ऊपर निशान पड़े हुए हैं। कितने जन्मों के कर्मों की वासनाओं इस मंदिर का मन के ऊपर ऐसे जमी हुई है, हमें पता भी नहीं है, इस दुनिया में हमने देखा नहीं है, लेकिन रात को स्वप्न में ऐसी चीजें देखा है जो अपना हमारे को इस दुनिया में एक्सपीरियंस नहीं है, अगले जन्मों का है। भाई ऐसी खिचड़ी मन बना देता है, कुछ पता नहीं लगता है कभी। इसको शुद्ध करना इतना आसान नहीं है। चेतो दर्पण का अर्थ भी मन को शुद्ध करना ही है। तो मन अगर शुद्ध हो जाए तो क्या लाभ होएगा? अदुखम असुखम समम, फिर तो न दुख है न सुख है, दोनों एक जैसे हैं। सुख नहीं होगा तो भी परेशानी नहीं है, दुख नहीं होगा, दुख होगा तो भी परेशानी नहीं है, दोनों में सम हो जाएगा। क्यों? कि वो समझेगा ये सुख और दुख आने जाने वाले हैं, ये तो सदा रहने वाले हैं नहीं। मन एकाग्र, अच्छा ऐसे कहा जाए तो ये सुख और दुख भी मन की वृत्ति है, अपने आप में उसका कोई अस्तित्व है नहीं। जिसको मन अच्छा मान लेता है उसको सुख कहता है, जिसको मन बुरा मान रहा है उसको दुख कहता है। और ये सब की धारणा अपनी अपनी होती है, सुख और दुख की भी परिभाषा लोगों की अपनी अपनी है, तो उसके लिए दुख सुख कुछ भी नहीं रह जाता है। और श्री प्रभुपाद का तात्पर्य इसमें जो है, ये तीनों गुणों के प्रभाव से हमारा मन जो है दूषित हो जाता है। और दो चीजें देखें, देखो माइंड एंड कॉन्शियसनेस, माइंड एंड कॉन्शियसनेस दो शब्द, इधर मन है आगे चित्त है, इसलिए दोनों को यहां इकट्ठा करके लिखा है। तो ऐसे नहीं इस श्लोक में मन नहीं है, लेकिन चित्त ऊपर से लिया हुआ है, मन यहां से लिया हुआ है, तो जो मन और चित्त दोनों है, ये दोनों के कारण ये संभव होना संभव है। श्री प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं कि जब हम जीव आत्मा की बात करते हैं तो उसके साथ उसका मन और उसकी चेतना उसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि बद्ध जीव आत्मा के साथ चार चीजें हमेशा रहती हैं सूक्ष्म शरीर के रूप में, तीन का हमारे को हमेशा अभ्यास होता है, मन बुद्धि अहंकार झूठा अहंकार, चौथा होता है चित्त, चौथे को कहते हैं चित्त, और वो चित्त होता है दूषित कॉन्शियस, दूषित चेतना। तो सूक्ष्म शरीर चार चीजों का, अन्य भागवत में चौथा चित्त लिखा हुआ है, तो यहां ये चौथा भाग ये आत्मा के साथ तब तक रहता है जब तक आत्मा मुक्त नहीं हुआ है, जब तक आत्मा बंधन में, इन चारों चीजों के बंधन में है सूक्ष्म शरीर के। भौतिक और दुख और सुख से ऊपर उठ जाएगा, भौतिक दुख और सुख से ऊपर उठ जाएगा, और आध्यात्मिक जगत में दुख है नहीं, केवल सुख ही सुख है, वहां तो केवल आनंद ही आनंद है। जिसको हरि कथा का आनंद आ गया, उसको संसार के दुख और सुख का कोई चिंता नहीं है, वो दुख सुख के ऊपर उठ जाएगा। आप अभी अभी अनुभव करके देख लें, हमारे अपने संस्था में जय पिता का महाराज को शरीर का कितना दुख होगा, ऐसे शरीर से इतना सारा चलना और प्रचार करना ये सामान्य बात नहीं है। वो राधा गोविंद महाराज को देखें, भाई अभी भी कथा करना है जा रहे हैं, तो ये शरीर के दुख सुख से इस चेतना ऊपर उठ जाती, क्योंकि उनको रस आता है कथा करने में, भक्तों को मिलने में, भक्तों के कीर्तन सुनने में उनको अच्छा इतना लग रहा है कि शरीर के दुख और सुख का उनको कोई चिंता नहीं है। शरीर ऐसा नहीं दुख दे नहीं रहा है, लेकिन ये तो काम ही शरीर का दुख देना, अब इसके लिए हम काम क्यों रोकें अपना, भाई ये तो ऐसे होना ही है, इसके लिए काम क्यों रोकें। तो जिसका अध्यात्म वो रता पुंसी, जो भगवान में रत है, हरि कथा में जिनका मन लगा हुआ है, हरि कीर्तन में मन लगा हुआ है, हरि भक्तों के संग में मन लगा हुआ है, उनको शरीर के दुख की परवाह नहीं। प्रभुपाद जी जब यहां 77 में इंग्लैंड गए थे, तब उनका कवि चित्र देखते हैं, तो उनको चार आदमी पालकी में उठा के ले गए थे, डोली में ले गए थे, और यहां से फिर इंग्लैंड चले गए प्रचार करने के लिए उस स्थिति में, और कह रहे थे अभी भी मैं अमेरिका चल के प्रचार करना चाहता हूं, जबकि वो स्वयं बोल भी नहीं पा रहे थे। और एक तो प्रभुपाद ने एक दिन कह ही दिया कि भाई देखो संसार में चार बंधन है, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, यही तो संसार का बंधन है ना। अब देखिए सोना मैंने छोड़ दिया, खाना मैंने छोड़ दिया, बाकी दो चीज तो पहले ही छोड़ दी थी संसार से, अब ये भी छोड़ दिया, अब कुछ भी नहीं रह गया। लेकिन फिर भी आखिरी दिन तक भागवत का अनुवाद कर रहे थे, बगैर खाए के बगैर सोए के भागवत की टीका लिख रहे थे, कमेंट्री लिख रहे थे। तो ये उन लोगों के स्तर की बात है जिनके लिए भौतिक दुख और सुख उनकी चेतना को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी शुद्ध हो गई है कि उसका प्रभाव भी उसके ऊपर नहीं पड़ता। जैसे कोई इम्यूनाइज, जैसे आदमी को किसी को टीका लगा हुआ है, पहले से ही पोलियो का ड्रॉप पिया हुआ है, तो पोलियो के कितने भी वायरस हो लेकिन उसको नहीं लगेगा। तो ये असल में स्पिरिचुअल इम्यूनाइजेशन जिसकी हो जाती है, कृष्ण भावना भावित जो हो जाता है, उसको संसार की अप्स एंड डाउन्स, दुख और सुख प्रभावित नहीं कर सकता है। आएगा चला जाएगा, जैसे बीमारी आएगी लेकिन उसको नहीं लगेगी, क्योंकि वो इम्यूनाइज है, उसने अपने आप को वीत, ये वीत जो शब्द है उसकी वीत का यहां इम्यूनाइजेशन अर्थ ले ले कि वो इनसे इम्यून हो गया। अब प्रभुपाद जी नीचे लिखते हैं, कपिल देव में आरंभ में कहा है कि मैं आपको ऐसा शुद्ध योग बताता हूं जिससे संसार के दुख और सुख दोनों से आप मुक्त हो जाओगे। अब ये श्लोक उसकी प्रक्रिया बताई जा रही है कि दुख और सुख से मुक्त कैसे हुआ जाए, और वो रास्ता है भक्ति योग का। जैसे कि नारद पंचरात्रा मैं बताया, तत्परतवेना निर्मलम, तत् का यहां अर्थ होता है भगवान, प्रवर्तन, जब भगवान की तरफ प्रवृत्त हो जाएं तो निर्मल हो जाएंगे, संसार की तरफ प्रवृत्त हो जाएंगे तो मल लग जाएगा, वो मल है संसार में और भगवान है निर्मल। तत् का अर्थ है, तत् मतलब तत्पदार्थ, तत्पदार्थ मतलब भगवान, और प्रवृत्त तत् माना उसकी तरफ प्रवृत्ति चली जाए, भगवान की तरफ प्रवृत्ति चली जाए तो फिर निर्मल हो जाएगा, और संसार की तरफ प्रवृत्ति चल जाए तो बंधन हो जाएगा। तो ये प्रभुपाद जी ने वहां से कोट किया है, हमारा मन हर हाल में कहीं ना कहीं लगा रहना चाहिए, मन अकेला मन बैठा हुआ शैतान है, तो मन को कैसे भगवान में लगाया जाए। भगवान ने भगवत गीता में कहा, मन मुझे अर्पण कर दो, अब भगवान को मन कैसे अर्पण करें, आपका क्या राय है, मन भगवान को कैसे अर्पण किया जा सकता है, मन कोई चीज तो है नहीं आपके हाथ में जाके भगवान के चरणों में चढ़ा के आए, तो मन भगवान को अर्पण कैसे करेंगे। माइंड को एंगेज, माइंड है क्या? माइंड के जो काम है वो भगवान के सेवा में लगाना, भगवान को माइंड को मन को अर्पण करना है। अब मन के काम क्या है? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प मन का काम है। ये संकल्प विकल्प भगवान संबंधी हो, अभी हमारा संकल्प विकल्प संसार संबंधी है, तो मन के कार्यों को भगवान की सेवा में लगाना। तो मन के कार्य क्या है? आपका मन जब कहे कि मुझे, मानो के आज मेरे को जो है वो आलू पराठा खाना है, ये मन में आ जाए दही के साथ, तो इसका मतलब है कि आपके मन की प्रवृत्ति संसार की तरफ है। और अभी मन बहना आए कि आज भगवान को बहुत अच्छे पराठे भगाने के भोग लगाना है, भगवान को आज सर्दी की मौसम में बहुत अच्छा भोग लगाना है, अब संकल्प करना है, अपने लिए नहीं करना है, भगवान के लिए कर दिया। बाजार में घूमते हुए देखा बहुत अच्छे आम मार्केट में पड़े हैं, मन कहेगा ले चलो खाएंगे, बच्चों को देंगे, ये संकल्प हो गया संसार में अपना। अभी उसी वक्त मन में आ जाए आज तो भगवान को बहुत अच्छा आम का भोग लगेगा, आज ये भगवान के लिए अर्पण करने हैं, तो एकदम मन की प्रक्रिया संकल्प भगवान की तरफ हो गया। विकल्प है कि आज मैं मंदिर नहीं, आज मुझे वहां जाना, ये विकल्प है। आज मैं कहां जाऊं, मंदिर जाऊं कि आज मैं सिनेमा में जाऊं, तो विकल्प ये मन करेगा। तो उस वक्त विकल्प में सिनेमा में क्यों जाऊं, मंदिर में जाना चाहिए ना, तो विकल्प भी भगवान की तरफ लगाओ, संकल्प भी भगवान की तरफ लगाओ, और मन की भावनाएं उत्पन्न होती है मन में। तो मन का कार्य क्या है इसको ढूंढो, और वो मन का कार्य भगवान की सेवा में लगाओ, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाओ। तो अब आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं, तदा पुरुषात्मानं केवलं प्रकृतेः परम् निरन्तरं स्वयं ज्योतिर् अणिमानम् अखंडितम्। अब ये तदा मतलब उसके बाद, किसके बाद? जब मन शुद्ध हो गया, चेतना पवित्र हो गई, उसके बाद तदा पुरुष आत्मानम्, यहां पुरुष का अर्थ है जीवात्मा, वो जीवात्मा पुरुष आत्मानम्, वो जीवात्मा अपने आप केवलम प्रकृति ही परम, वो जानेगा कि मैं इस प्रकृति से परे हूं, मैं मुझ में और ये प्रकृति में बड़ा अंतर है, हम सजातीय नहीं है, विजातीय है। आप जानते हैं सजातीय विजातीय क्या होते कहते हैं भाई, ये हमारी जाति का ही, हमारी जाति का नहीं है, सजातीय और विजातीय। तो आत्मा एकदम मान लेगा कि मैं ब्रह्म हूं, ये संसार जड़ है, मैं चेतन हूं और ये जड़ है, इतना निर्णय कर लेगा मन, क्योंकि मन शुद्ध हो गया ना और चेतना पवित्र हो गई, तो अब ये पता लग रहा है कि केवलम, केवलम का वैसे केवल का मतलब होता है ओनली, इमीजिया, यहां श्री प्रभुपाद ने कहा केवलम का मतलब प्योर, केवल का मतलब बिल्कुल शुद्ध हो गया है, जिसके अंदर कोई भी भौतिक भाव नहीं है। प्रकृति है परम, प्रकृति से परे हूं, स्वयं ज्योति, अपने आप में प्रकाशित हूं, आत्मा अपने आप में प्रकाशित है। और दूसरा शब्द है निरंतर, निरंतरम, अंग्रेजी में श्री प्रभुपाद ने कहा नॉन डिफरेंट, निरंतरम का मतलब असल में सदा रहने वाला, निरंतर, निरंतर का मतलब नित्य, मैं नित्य हूं। नॉन डिफरेंट का मतलब मुझ में कोई अंतर नहीं आता है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहता हूं, निरंतर सदा शाश्वत रहने वाला। तो निरंतर कह गया तो दूसरा शब्द क्या आएगा, ये प्रकृति निरंतर नहीं है, मैं निरंतर हूं प्रकृति निरंतर नहीं है, मैं प्रकाशमान हूं प्रकृति अंधकार है, ये उसको समझ में आ जाएगा। जीव आत्मा जिसका मन पवित्र हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, चेतना निर्मल हो गई, तो वो अपने आप को प्रकृति से परे नित्य स्वयं प्रकाशमान। अब दो शब्द जो हैं ये बहुत मुख्य हैं जीवात्मा के, दो एक गुण और बताए गए हैं। अणिमानम, अणिमान तो एक होता है अणिमा और दूसरा होता है महान बड़ा, अणिमान छोटा। भगवान है, हम है अणु और भगवान है विभू, अणु और विभू। अणु और विभू को ऐसे समझें कि ये गंगा नीचे बह रही है ना, इसमें से आप बोतल भर के आए तो वो भी गंगा है, ये है अणु गंगा जो आपकी बोतल में है, और जो बह रही है वो विभू गंगा है। वो तो गंगा यहां से लेकर गंगा सागर तक कितने लोगों को पवित्र करेगी, आपका बोतल तो आपके घर में ही काम आएगा। तो अणु का अर्थ ये है कि जीव आत्मा अणु है, विभू नहीं है, भगवान नहीं है, उसका एक अंश है। सूर्य नहीं है, सूर्य की किरण है। अब सूर्य की किरण भी सूर्य है, लेकिन सूर्य जितना प्रकाश नहीं है, तो सूर्य की किरण है सूर्य नहीं है, आत्मा है परमात्मा नहीं है, ब्रह्म है पर ब्रह्म नहीं है। जीव है भगवान नहीं है, अणिमान का अर्थ ये हुआ। और अखंडितम, अखंडितम का मतलब इसका कभी भी खंडन नहीं किया जा सकता, विभाजन नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। इस श्लोक, इस शब्द को लेकर प्रभुपाद का तात्पर्य मुख्य रूप से है, जो ज्ञान मार्ग है उसमें एक उदाहरण दिया जाता है घट आकाश पट आकाश। ये उदाहरण कैसा है घट आकाश पट आकाश का, अगर ये बोतल है खाली तो इसमें भी आकाश है, हवा है, खाली जगह है खाली बोतल में, और बाहर भी सारे सब हवा ही हवा है, तो इसके अंदर वाली हवा को, मटके के अंदर वाली हवा को कहेंगे मट आकाश। आकाश का मतलब क्या है, स्पेस, खाली जगह, और बाहर सारी ये स्पेस को कहेंगे पट आकाश। अब क्या कहेंगे कि जैसे ये मटका फूट गया तो ये घट आकाश मट आकाश में एक हो गया। ये है ज्ञान मार्ग वाले निराकार मायावादियों का सिद्धांत। पर यहां अगर आत्मा अखंडित है तो पूरे जो मट पट आकाश है उसमें से घट आकाश अलग हुआ कैसे भाई, खंडित किया नहीं जा सकता, तो आपने खंडित कैसे किया? जब खंडित किया ही नहीं जा सकता है तो आपने अलग कैसे कर दिया इसको, अखंडित है। आत्मा का खंडन नहीं किया जा सकता, काटा ही नहीं जा सकता, तो भगवान से कहा। इसका अर्थ ऐसे है, कभी लेते हैं कि भाई मौसमी है, उसके छिलका उतार के एक एक उसका अलग करके निकाल दिया तो फिर मौसमी खत्म हो गई, तो क्या हम भगवान के अंश निकल के आ गए तो फिर भगवान खत्म हो गया? पूर्ण है, उसमें से हम पूर्ण निकले हैं, लेकिन हम अणु पूर्ण है तो उसमें से भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन हम उससे कटके नहीं आए हैं, ऐसे खंडित नहीं है, अखंडित। तो जो सिद्धांत तात्पर्य में, तो इसका श्लोक का अर्थ क्या हुआ, एट द टाइम द सोल कैन, एट दैट टाइम मतलब उस समय कौन से समय, चेतना शुद्ध हो गई, मन पवित्र हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, उपाधियों से रहत हो गया, उपाधि शरीर की उससे रहत हो गया, उपाधि विनुर्मुक्तम, उप आदि कोई हमारे ऊपर और चीज लाद ली जाए उसको उतार दिया, उपाधि मैं ये हूं, मैं हूं, ये उपाधियां हैं, तो उस समय आत्मा अपने आप को देखता है कि मैं भौतिक जगत से न्यारा हूं, परे हूं, ये लोक है, मैं अलौकिक हूं। मैं इस लोक के मसाले का बना हुआ नहीं हूं, मैं चेतन हूं। ये सब जड़ है संसार, पहले तो ये देखेगा और देखेगा स्वयं प्रकाशित, स्वयं प्रकाशित की माना क्या, ऐसा नहीं है कि अंदर कोई ट्यूबलाइट जल जाएगी। हाँ, स्वयं प्रकाशित का कुछ लोग अर्थ निकाल देंगे अंदर बल्ब जल जाएगा। यहां स्वयं प्रकाशित का अर्थ है आत्मा सत चित्त, जो चित्त है ना वो स्वयं प्रकाशित की परिभाषा है। चित्त किसको कहते हैं, ज्ञान को। ज्ञान वो स्वत उसको ज्ञान हो जाएगा, आत्मा ज्ञानमय है। चित्त सत्य है, सदा रहने वाली, निरंतर का अर्थ होगा सत्य। और ये जो शब्द अभी बोल रहे हैं, कौन सा बोल रहे हैं, स्वयं प्रकाशित, इसका अर्थ है चित्त, मतलब ज्ञानमय। अज्ञानता को अंधकार कहते हैं और ज्ञान को चित्त कहते हैं। तो स्वयं, बहुत से तो ऐसा ध्यान करते हैं कि अंदर में लाइट जलने लग जाएगी, अंदर प्रकाश दिखेगा, तो इस प्रकाश का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश। ये प्रकाश आत्मा के ज्ञान का है, ये प्रकाश कोई रोशनी नहीं है। ये जो सत चित आनंद आत्मा में, ये चित्त प्रकाश का परिभाषित है। चित्त का मतलब ज्ञान, और ज्ञान होता है प्रकाश और अज्ञान होता है अंधकार। तो इसकी परिभाषा ये होगी कि वो सेल्फ इफल्जेंट का मतलब अपने ज्ञान में स्थित हो जाएगा। नेवर फ्रेगमेंटेड, अखंडित है, उसमें से कभी भी वो खंडित नहीं होगा। भले वो छोटा है लेकिन अखंडित है। अखंडित का एक भाव यह है कि निरंतर चलने वाला है, सदा रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। कहीं एक शब्द कहते हैं ना, परिवर्तन नहीं आता है उसमें। अचलोयम, अचलोयम का मतलब नहीं चलता है, का मतलब उसके अंदर परिवर्तन नहीं आता है। तो श्री प्रभुपाद का तात्पर्य घटपट को देख लिया आपने, तात्पर्य आपको घट और पट इसमें है कि नहीं? हाँ, होना चाहिए भाई। मायावाद वो तो हमने दूसरी तरीके का, तो ये घट और पट पर प्रभुपाद के प्रवचन में है, इन श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद के प्रवचन है ना, उसमें ये है। मैं देखा एक नजर है उधर, अब इसको ढूंढेंगे तो मिलेगा घट और पट का खंडन। जी,
इसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो रहा था, थोड़ा
क्या बोलिए।
भगवद गीता 15.7 में हमने पढ़ा था कि इसमें लिविंग एंटिटीज आर क्लियरली डिफाइंड एज फ्रेगमेंटल पार्ट एंड पार्सल ऑफ, तो इसके पर्पस में बताते हैं भगवद गीता में, फ्रेगमेंटल पार्ट एंड पार्सल इटरनली फ्रेगमेंटेड,
इटरनली फ्रेगमेंटेड, इसका मतलब
इसमें जैसे कहा गया उसमें कहा गया
भगवान जीव भगवान का अंश है। दो प्रकार के भगवान के अंश होते हैं, स्वांश विभिन्न अंश। स्वांश होते हैं सारे विष्णु तत्व, जितने अवतार है वो स्वांश है, वैसे ही भगवान से वैसा ही दूसरा बन जाए वो स्वांश कहलाता है। और दूसरे अर्थ को, दूसरे अंश को बोलते हैं विभिन्न अंश। विभिन्न मतलब सेपरेटेड, सेग्रीगेटेड, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल, पार्सल शब्द कहने से ये हो गया कि वो अलग हैं अपने आप में, उनकी आइडेंटिटी अलग है क्योंकि वो अणु है। ये जो स्वांश है ये सब विभू है, ये कोई अणु नहीं है, ये सारे विभू है। और जो सेपरेटेड पार्ट पार्सल है वो अणु है। तो एक तो इनकी ये अंतर है, और सेपरेटेड पार्ट एंड पार्सल जो है उनके ऊपर माया का प्रभाव हो सकता है लेकिन स्वांश के ऊपर नहीं हो सकता। जीव भगवान का अंश है। आप वो श्लोक को पढ़े, जो ये श्लोक है उसी को पढ़ते हैं। ममाई वंश जीव लोके, सारे जीव जितने भी लोक में है, या जीव का अर्थ है जीवात्मा। ममाई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन है। ये जीव सनातन है, लेकिन यहां भूत है, वहां जीव है, लोक में जीव है, फिर इधर जीव के साथ भूत है और सनातन है। जीव सनातन है लेकिन उसको भूत लगा हुआ है, भूत लगा हुआ है। क्या भूत लगा है? पांच भूतों के शरीर जो है ये भूत है। कहां से मिला, किसने दिलाया? मन, मन ने दिलाया। काय के लिए दिलाया? पांच इंद्रियों के भोग के लिए। कहां से दिलाया? प्रकृति से। तो जी भगवान के ऊपर भौतिक प्रकृति के पांच तत्वों का कोई शरीर नहीं होता, और जीव को उस शरीर में आना पड़ता है, इसलिए वो सेपरेट पार्सल है जिसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ता है। बाकी जो फ्रेगमेंटल है, एक उदाहरण कभी देते हैं, जैसे ये बाल है मेरे शरीर का अंग है, लेकिन ये काटे जा सकते, काटने के बाद अलग हो जाएंगे, फिर इसका कोई वैल्यू नहीं है। ये नाखून है मेरे शरीर का अंग है, लेकिन ये अलग हो जाएगा तो फिर इसका कोई शरीर में वापस लग नहीं सकता, इसको पार्ट एंड पार्सल कहते हैं। गर्दन शरीर का अंग है, लेकिन गर्दन काटने के बाद शरीर नहीं रहेगा, लेकिन बाल काटने के बाद और नाखून काटने के बाद शरीर रह जाएगा। तो जीव आत्मा की तुलना नाखून के साथ या वहां बाल के अगर भाग के साथ दी गई है, इसका मतलब जो अलग हो, जो अलग हो गए हमेशा के लिए, एटर्नली सेपरेटेड। ऐसा नहीं है कि अब वापस वो मिल जाएंगे। पानी समुद्र का है, बादल में जाता है, नीचे गिरता है, मिट्टी के साथ मिल जाता है। अब मिट्टी के साथ मिलने के बाद वैसे वापस शुद्ध नहीं हो सकता, फिर जाके समुद्र में मिलता है, लेकिन वो मिट्टी वाला जो है वो तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ ही गया ना। तो जो ये जो जीव आत्मा एक बार, वैसे एक ऐसे भगवान से अलग हुआ ही नहीं है एक दृष्टि से, ये बहुत, ये विषय जो है बहुत गंभीर विषय है।
इसको ऐसा ना समझे जैसे सूर्य और सूर्य की किरणें तो वो सेपरेट, जिसे इसमें उदाहरण दिया हुआ
कोई सेपरेट के भाई, सूर्य की किरणें सूर्य के साथ है ना, उसको काट तो नहीं सकते,
तो वही नॉन फ्रेगमेंटल होगी जो इसमें बताया हुआ, और उसमें जो बता रहे हैं फ्रेगमेंटल
आपको खट, वो घट आकाश पट आकाश का भी आपको दिखा दूं। प्रभुपाद ने कहा कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं हम? 17। सन एंड सनशाइन, एक तो ये उदाहरण है, श्री प्रभुपाद ने यहां ज्योति का लिखा है स्वयं ज्योति, जैसे भगवान की ब्रह्म ज्योति है ऐसे जीव की अपनी ज्योति होती है, यहां ज्योति की लेक्चर में प्रभुपाद ने इसको ऐसे ज्योति है, ये घटा उसके बाद है, देयर थ्योरी इज घट आकाश एंड पट आकाश। घट आकाश जैसे मैं आपको उदाहरण दिया, ये प्रभुपाद ने यहां लिखा है, बोला इसका खंडित नहीं हो सकता है आकाश, मतलब जीव भगवान से अलग कोई तोड़ के नहीं बनाया गया है, वो अपने आप में पहले उसके साथ वापस मिल जाए ऐसा भी नहीं है, वो सिर्फ ज्योति के साथ मिल सकता है। लेक्चर तो बहुत लंबा है, लेकिन हमने देखा था ये दो चीज से सिद्धांत के। मैं आपका प्रश्न अच्छा है एक दृष्टि से कि एक जगह उसको फ्रेगमेंट नहीं किया जा सकता और दूसरी जगह वो फ्रेगमेंट हो गया है, दोनों को रिकनसाइल कैसे किया जाए। वो तो दोनों ठीक हैं, लेकिन जो ये जो यहाँ अब हमारा चर्चा का विषय है कि जीव अखंडित है तो भगवान से खंडित होके कैसे अलग हुआ, इसका अर्थ है कि वो कभी भगवान के साथ जुड़ा हुआ था ही नहीं, वो हमेशा ही सेपरेट इंडिविजुअल है, लेकिन है उसका। और फिर ये उदाहरण जो आप दे रहे हैं, सूर्य और सूर्य की किरणाएं सूर्य से अलग नहीं की जा सकती, वो है सूर्य के ऊपर ही आश्रित, वो सूर्य के ऊपर आश्रित हैं,
रहते हुए भी फ्रेगमेंटेड
है, लेकिन फिर भी अलग है। वहां फ्रेगमेंट ऐसे होता है कि ये अंदर आ गई दरवाजा बंद, तो आधी अंदर रह गई आधी बाहर रह गई।
दोनों एग्जांपल को कवर कर लेता है
उदाहरण, ये यही दिया हुआ है मुख्य और दूसरा खटास घास और पकटास का
लिए। चिंगारी और आग, परमात्मा आत्मा का समूह है, परमात्मा जो है बहुत सारी आत्मा इकट्ठी हो गई परमात्मा बनी,
ऐसा नहीं है। ये तो खिचड़ी बना दी, चावल लाके खिचड़ी बना दी परमात्मा की। ऐसा इस परमात्मा ऐसे है जैसे सूर्य आकाश में है ना, अब जितने भी बर्तन यहाँ बाहर भर के रख दो घी के, तो सबके अंदर सूर्य का गोला दिखेगा और हर एक के अंदर अलग अलग दिखेगा। ऐसे परमात्मा सब हृदय के अंदर ऐसे है जैसे सूर्य का गोला पानी के या घी के अंदर उसका रिफ्लेक्शन पड़ता है, ऐसे ही असल में जीव आत्मा का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, इसको रिफ्लेक्शन थ्योरी कहते हैं। थोड़ी देर के लिए जब एक 12वें स्कंद भागवत में आता है मार्कंड ऋषि प्रलय देखना चाहते, तो अपने आश्रम में बैठे अचानक कहीं से पानी आया, पानी में बह गए, देखा सब कुछ समाप्त हो गया, फिर देखा कि वो एक वट वृक्ष के नीचे एक छोटा बच्चा बैठा है, उसका पांव अंगूठा चूस रहा है, उसने सांस लिया उसके पेट में चले गए, और थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वही घाट पे बैठे जहां अपने आश्रम में थे। तो ये जितना उनको एक्सपीरियंस हुआ प्रलय का, और ये तो सब थोड़ी देर के लिए माया के कारण था। ऐसे ही जीव आत्मा के ऊपर माया का प्रभाव होता है तो वो सब कुछ ये करता है, वो एक इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन थ्योरी, आभास। जैसे परमात्मा किसी कहते हैं परमात्मा का अस्तित्व आध्यात्मिक जगत में नहीं है, परमात्मा केवल भौतिक जगत में जीवों को साथ देने के लिए ऐसे ही आया है जैसे भगवान का एक प्रतिबिंब पानी में पड़ता है, ऐसे हर एक हृदय के ऊपर है, ऐसे परमात्मा की ऐसे जीव आत्मा का भी ऐसे ही वहां रहते हुए यहां शरीर के अंदर मैंपन का जूठापन कर दिया है अहंकार के लिए, इसलिए यहां सब कुछ फंसा हुआ है, इससे निकल गया तो वो वैसे पहले ही वहां है, कहीं वहां से आना नहीं है, लेकिन है वहां सेपरेट, वहां पहले से ही सेपरेट है, ऐसा नहीं कि अलग बाद में किया है और फिर मिलके एक हो जाएगा, ऐसा नहीं। बहरहाल ये थोड़ा सा और गंभीर विषय है, अभी आगे के श्लोक तक चलते हैं। ज्ञान वैराग्य युक्तेना भक्ति युक्तेन चात्मना परिपश्यत्य उदासीनम प्रकृतिम च हत औजसम। ज्ञान वैराग्य युक्ते न, ज्ञान वैराग से युक्त भक्ति युक्ते न चात्मना, जब वो भक्ति का अभ्यास करेगा, जब भक्ति को धारण कर लेगा तो उसके लिए अलग उसको ज्ञान और वैराग्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। प्रभुपाद का प्रवचन में इस बात के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है और यहां तात्पर्य में लिखा है कि श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में बताया गया है, देखें लिखा है ना, और दूसरे स्कंद में कौन सा श्लोक है जिसमें यह लिखा है, वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित ज्ञान वैराग्य, अपने आप आ जाएगा। ये भक्ति का फल है, इसके लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है। तो भक्ति के अभ्यास करने से, भक्ति के अभ्यास करने से ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। ज्ञान किस विषय के उत्पन्न हो जाएगा, आप ये समझ लीजिए कि ये ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा आगे जो आत्मा के लक्षण बताए गए हैं। कौन से आत्मा के लक्षण बताए गए, ये कैसा है, अखंडित है, अणि है, ये ज्ञान हो जाएगा ना, ये अपने आप ज्ञान हो जाएगा कि आत्मा अखंडित है, आत्मा अणि है, आत्मा स्वयं प्रकाशित है, आत्मा निरंतर है, ये जो शब्द हैं सारे, इस बात का ज्ञान हो जाएगा। और वैराग किससे हो जाएगा, फिर वैराग हो जाएगा जो भौतिक बंधन के कारण है उनसे वैराग हो जाएगा, जो प्रकृति के गुण हैं उनसे वैराग हो जाएगा। तो फिर क्या है, परिपश्यति उदासेन प्रकृष्टेन रूपेण पश्यति, मतलब अच्छी तरह से देखेगा, क्या देखेगा, उदासीनम। उदासीन किसको कहते हैं, उद का मतलब ऊपर, आसन का मतलब बैठना, जैसे हम देखो इतने ऊपर बैठे हैं, अब नीचे से कितनी भी भारी गंगा बहती जाए, कभी देखें कि तूफान आया है, आंधी आई है, लेकिन हम ऊपर बैठे हैं देख रहे हैं, हमारे को ऊपर प्रभाव नहीं डाल। आप ऊपर बैठ के दुनिया में देखें, भाई दो बैल लड़ रहे हैं नीचे, एक दूसरे को मार रहे हैं, और देखा हमने के बीच में से कोई आया उसको भी मार दिया, लेकिन हम तो छत के ऊपर बैठे हैं, वहां क्या होगा। तो उदासीन का अर्थ होता है उद ऊपर, आसन ऊपर, आसन लगाए। वैसे उदासीन एक संप्रदाय है पूरी, उदासीन संप्रदाय का अर्थ यह है कि भौतिक दुनिया से ऊपर बैठ जाए। उदासीन, सन्यासी, उदासी, ये सब जो है इनका भाव एक ही होता है कि वो संसार की परपंच से परे होते हैं। संसार आपस में गुण है, ये गुण है, गुणों से वर्तन कर रहे हैं, इंद्रियां हैं, ये अपने विषयों में भोग कर रही है, न मैं इंद्रिय हूं न मैं विषय हूं, न मैं गुण हूं न मैं गुणों का कोई जो है कारण हूं, मैं तो आत्मा सच्चिदानंद हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाते नहीं है पीते नहीं है, वो खाते भी है पीते भी है सोते भी है, लेकिन वो समझते हैं ये तो शरीर कर रहा है, ये तो इंद्रियां कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं। तो इसलिए जो शब्द इसके बाद में है वो महत्वपूर्ण, ये शब्द है परिपश्यति उदासीन, अपने आप को उससे अलग देखेंगे। उदासीन का अर्थ मन समझे, प्रकृति से अपने आप को अलग देखेंगे, नीचे आ गया ना प्रकृति, अपने आप को प्रकृति से अलग अनुभव करेंगे और उनके ऊपर प्रकृति का हत्त ओजसम, प्रकृति का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकृति का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर बैठे हैं। भाई नदी हमारे को कुछ नहीं करेगी, वहां उसके अंदर गिरेंगे तो पत्थर में सर फूटेगा, बहा के लाएगी डुबाएगी, लेकिन ऊपर बैठेंगे तो क्या करेगी। उदासीन का मतलब है कि हम उस प्रभाव में गए, संसार के प्रभाव में है ही नहीं, तो फिर हमारे को संसार क्या करेगा। तो ऊपर बैठे हुए हैं ये, इसलिए इनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। कितनी गति से नदी बह रही है, देखो बहुत गति से बह रही है, कुछ भी गिरेगा तो उसको फल पल भर में बहा के ले जाएगी, लेकिन बाहर बैठे को क्या करेगी, ऊपर बैठा क्या करेगी। संसार कितना भी प्रभावशाली है लेकिन आत्मा का क्या बिगाड़ सकता है, आत्मा तो अखंडित है, वो तो निरंतर है, उसका क्या बिगाड़ेगा। तो यहां मुख्यता यह है कि ये अभी तक जो कहा गया है कि आत्मा अपनी पहचान कर लेगी वो करेगी भक्ति के द्वारा, और भक्ति जब परिपक्व होगी तो उसका ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा, जो सोया हुआ है वो जागृत हो जाएगा, जब वो जागृत हो जाएगा तब वो उदासीन स्तर के ऊपर पहुंच जाएगा, तब उसके ऊपर ये संसार के परिवर्तन का, दुख और सुख का प्रभाव नहीं पड़ेगा, हानि लाभ का प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेरे तेरे का प्रभाव नहीं पड़ेगा और शत्रु मित्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उन सब से निर्लेप हो जाएगा। दूसरा निर्लेप इसका उदाहरण देते हैं, निर्लेप कमल का पत्ता जैसे निर्लेप होता है, पानी में होते भी वो पानी नहीं छूता है, ऐसे संसार में रहते हुए भी संसार उनको नहीं छूता है। इसका उदाहरण क्या देते हैं, इसका उदाहरण देते हैं, देखो नाव होती है ना, तो उसका नाव का काम है समुद्र में रहना, भाई नाव तो है नदी पार करने के लिए, तो नाव पानी में पड़ी रहे तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन पानी अगर नाव में आ गया तो बड़ी समस्या है। हम संसार में रहे कोई परेशानी नहीं है, संसार हम में आ गया तो बंधन हो जाएगा। तो ऐसे जो ये है भक्ति का अभ्यास करने वाले, ये संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त है, इनके अंदर में संसार को घुसने नहीं देते और वो आराम से पानी के ऊपर तैर रहे हैं, पानी को अंदर नहीं आने देते। तो अपने अंदर संसार को आने नहीं देना है और संसार की परिभाषा मैं और मेरा। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद से कोई पूछते थे आप कब आएंगे हमारे पास, कभी नहीं बोलते मैं आऊंगा, जब कृष्ण संक्षण करेगा सब कृष्ण इच्छा से, यानी अपना नाम लेके मैं करूंगा ऐसा कभी नहीं कहते थे, जो कृष्ण की इच्छा, रह रहे हैं संसार में लेकिन भगवान की इच्छा से, अपनी इच्छा से नहीं। सो उस दृष्टिकोण से ये ठीक तरह समझना चाहिए। अब ये स्थिति, इसमें आपने प्रश्न पूछा था उसने, है ना, श्री प्रभुपाद का पहला मेरे ख्याल में विचार है कि ज्ञान और वैराग्य के लिए हमारे को अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है, भक्ति के अभ्यास से ये अपने आप हो जाते। हरे कृष्ण। कौन क्या करे, हरे कृष्ण। सो इसके तात्पर्य में कोई विशेष चीज है डिस्कस करने की? अपने जीव का, जो हमने जीव कहां से पोषण आगे आ गई, क्या निरंतर है, अखंडित है, स्वयं प्रकाशित है, वो बात हो गई ज्ञान की। यहां और वैराग के लिए क्या लिख दिया है, डिटेच फ्रॉम द मटेरियल अट्रैक्शन। और जो रिनाउंस आर्डर शब्द लिखा है ये उदासीन के लिए लिखा है, ये उदासीन के लिए, जो परपट में शब्द रिनाउंस आर्डर है ये है उदासीन शब्द की परिभाषा। परिपश्यति के मतलब हर एक चीज को सही दृष्टिकोण से देखे, क्या क्या है ये समझ में आएगा। अब इसको समदर्शन का मतलब ये नहीं है भाई सोना पड़ा है पत्थर पड़ा है, वो जानता है कि सोना क्या है पत्थर क्या है, लेकिन है दोनों भौतिक काम किसके साथ, तो दोनों में से एक भी नहीं ले जा सकता मैं यहां से, इतना बेवकूफ नहीं है पत्थर और सोने को पहचानता नहीं है, पहचानता दोनों को है, ये ज्ञान होता है कि ये सोना है और ये पत्थर है, लेकिन ये जानता है कि ये दोनों ही भौतिक है, इन दोनों में से कोई भी मेरे साथ नहीं जा सकता, जब मेरा शरीर नहीं जा सकता तो ये कहां से जाएगा। तो वो अपनी एक अपने स्वरूप को पहचान लेता है, हम इसको साधारण भाषा में कहते हैं। अब छोटी बच्चियां है ना, 5 साल की ये बच्चियां हैं, 7 साल की, 8-10 साल की होती है ना, कहीं भी घूमे किसी की गोद में बैठे कोई भी उसको चूम ले तो कोई परेशानी नहीं, वो 15 साल से बड़ी होने लगती हैं तो वो अपने आप को पहचानती है, अब मुझे किसी से बात नहीं करना, किससे नहीं मिलना चाहिए, अब वो अपना उसको जब स्वरूप का पता लग जाता है तब वो बहुत से चीजों से अलग हो जाती है और अपनी उसको पहचान का ज्ञान हो जाता है। इसको हम उदाहरण देते हैं आत्म साक्षात्कार। ये स्थिति जो है ये जैसे लड़की अब जवान हो गई है तो वो कहती है हमें सबसे किसी से मिलना नहीं है, बात नहीं करनी है, वो उसका वैराग हो गया और उसको ज्ञान क्या हो गया कि अब मैं सिर्फ अपने परिवार के अलावा और किसी से मिलना नहीं है मेरे को। तो ये जो स्थिति है ये सेल्फ रियलाइज, इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। लेकिन इसके बाद का स्तर है भगवत साक्षात्कार, उसके बारे में बहुत से लोगों को पता नहीं है। क्या लड़की जवान होने से खुश हो जाती है क्या? नहीं। अब उसको कोई प्रेम करने वाला पति चाहिए जिसके सेवा करके वो संतुष्ट हो सकती। तो आत्म साक्षात्कार के बाद भगवत साक्षात्कार का मतलब भगवान जगत पति है उसकी प्रेम से सेवा करके संतुष्ट हो जाना, ये भगवत साक्षात्कार नेक्स्ट स्टेप है। तो आत्म साक्षात्कार पहला स्तर है, भगवत साक्षात्कार दूसरा स्तर है। तो ये जो कथा हो रही है ये रहे पहले स्तर की कथा है, ये आत्म साक्षात्कार की कथा है कि अब हमको किसी से मिलना नहीं, अब ये सब चीजों से हमें कुछ लेना देना नहीं। और अगर वो लेना देना करते, ऐसे भी कुछ लड़कियां होती हैं जवान होते ही वो बाहर चली जाती हैं, उसको कहा जाए प्रदूषित, वो कंटामिनेटेड हो गया, वो वातावरण उनका माइंड बुद्धि कंटामिनेटेड, कॉन्शियसनेस कंटामिनेटेड हो गई ना, क्योंकि वो अपने आप को पहचान नहीं पाई। ऐसे भी बहुत सारे समाज के अंदर हैं तत्व ऐसे जो जीव संसार शरीर के ही प्रभाव में चला गया, अपनी पहचान भूल गया, वो समझ लो के दूषित चेतना हो गई। इस नॉर्मल एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं। और उस स्थिति का वर्णन प्रभुपाद ने किया है, ऐसी स्थिति जब जीव की हो जाए, कौन सी, आत्म साक्षात्कार की, तब वो अपने आप को क्या समझेगा, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। यहां मैं ब्रह्म हूं का अर्थ है कि मैं चेतना हूं, मैं भौतिक प्रकृति का अंश नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, ये ब्रह्म की परिभाषा है। मैं स्पिरिट हूं, मैं मैटर नहीं हूं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं। और जब मैं ब्रह्म हूं तब उसके गुण कौन से होते हैं, न सोचती न कांक्षति, उसको न किसी जाने के दुख है, न किसी के पाने का दुख है, किसी अभाव से की परेशानी नहीं है, और कोई चला गया उसकी भी परेशानी है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है, और तब वो मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। इसका मतलब उसके बाद विवाह होता है मुझसे, वो अपने आप को जवान समझ ले उसके बाद मुझसे विवाह करता है अथवा मेरी पराभक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 19वां। न युज्यमानाय भक्त्या भगवती अखिलात्मनि सदर्शोऽस्ति शिवपन्था योगिनां ब्रह्म सिद्ध्यते योगिनां ब्रह्म सिद्ध्यै। योगी ब्रह्म सिद्ध्यै, इसका मतलब किसी ने अगर योग का अभ्यास किया है, अपने आप को ब्रह्म समझने के स्तर के ऊपर पहुंच भी गया है, ज्ञान के मार्ग से चलते हुए अपने आप को वो ब्रह्म अहम ब्रह्म अस्मि के स्तर के ऊपर पहुंच भी गया है, तो भी न युज्यमानाय भक्त्या भगवती, अगर वो युज्यमानाय मतलब लगता है, सेवा में लगता है, युज्यमान का मतलब, वैसे युज्यमान का योग का अर्थ एक ही है, युज्यमान, योग, युगल। अब भगवान से जुड़ता नहीं है, इसका अर्थ ऐसे नहीं, भाई भगवान से जुड़ेंगे कैसे, भक्ति सेवा के द्वारा। भाई आप किसी से जुड़ते कैसे हैं, सेवा के द्वारा। भाई जुड़ते हैं असल में प्रेम से, किसी के साथ हमारा संबंध जुड़ता है तो उसका मुख्य साधन होता है प्रेम, प्रेम से संबंध होता है। लेकिन अब मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं ये किस दुनिया को दिखाऊं कैसे, आप किसी से प्रेम कर रहे हो दुनिया को कैसे दिखाओगे, जब सेवा करोगे। प्रेम को दिखाने का प्रदर्शन करने का साधन है सेवा। तो युज्य माने आया का मतलब सेवा में लगना, कैसे सेवा में लगना, प्रेम के कारण सेवा में लगना। बोला जो ऐसे सेवा में लगते हैं उसको क्या बोलते हैं, भक्त्या, उसको बोलते हैं भक्ति के द्वारा। इसके लिए एक नौकरी होती है एक सेवा होती है, नौकरी होती है वेतन वाली और सेवा होती है प्रेम वाली। काम तो घर में बाई भी करती है, बच्चों को वो भी संभालती है, लेकिन है वो नौकरी, और मां भी बच्चों को संभालती है और सेवा करती है, वो है सेवा। तो नौकरी में और सेवा में बड़ा अंतर है, काम दोनों एक जैसा दिखता है लेकिन एक प्रेम के कारण होता है और एक स्वार्थ के कारण होता है। तो तो किसकी भक्ति करनी चाहिए? भगवती, भगवान की। ओम नमो भगवते, ओ भगवते। हमारे शरीर में आत्मा आई तो हम काम के हो गए, नहीं तो खत्म थे। ऐसे ये पूरा जगत जड़ है जब तक उसके अंदर परमात्मा प्रवेश नहीं करता। तो सारे जगत की आत्मा परमात्मा है, तो वो परमात्मा अगर किसी ने भगवत भक्ति अगर शुरू की नहीं है, सेवा में लगा नहीं है, तो ये कौन सा रास्ता है? शिव पंथा, कल्याणकारी मार्ग है। शिव का मतलब कल्याण होता है। ये कल्याणकारी सदृश अस्ति, उसके समान। तो वो ब्रह्म ज्ञान भी उसका कोरा है, उसका योग का अभ्यास भी अधूरा है, अगर उसने भक्ति के प्रेममयी सेवा में नहीं लगा है। जो कल्याणकारी पथ है उसको नहीं लिया है, तो उसके ये सारे काम अधूरे हैं, परिपूर्ण नहीं है। इस श्लोक का भाव ये है, परफेक्शन इन सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब ब्रह्मभूत का स्तर, आत्म साक्षात्कार का पद। कोई भी योगी अगर उसको प्राप्त कर भी ले, परंतु अगर वो भक्ति के सेवा के मार्ग में नहीं लगे भगवान की, परफेक्शन ऑफ सेलिब्रेशन कैन नॉट बी अटेंड, वो शुद्धि प्राप्त ही नहीं होगी, क्योंकि शिव पथ मंगलकारी रास्ता लिया ही नहीं है उसने। बोला मंगलकारी रास्ता कौन सा है? बोला भगवत भक्ति का। तो जब तक भगवत भक्ति का मंगलकारी रास्ता नहीं अपनाया है, तब तक उसके आत्म साक्षात्कार का सारा प्रयास निष्फल है। ठीक है, तो क्या चीजें परिपूर्ण नहीं है? देखिए, इसमें जो भक्ति के दो अंग हैं उसकी बात हो रही है, एक ज्ञान और एक त्याग। ज्ञान और वैराग्य दोनों परिपक्व नहीं है जब तक भक्ति में नहीं लगते हैं। एक ज्ञानी होते हैं, एक वैरागी होते हैं। तो ये ज्ञानी वैरागी ये होते हैं, जब तक भक्ति नहीं करते हैं तो कोई फल नहीं मिलेगा। स्वपंथा, दिस इज द ओनली ऑस्पिशियस पाथ, यही एक मंगलकारी मार्ग है। कौन सा? भक्ति का। लास्ट पार्ट पर मुझे कोई किसी की जिज्ञासा है, पढ़ के आया तो पूछ लीजिए।
इसमें ये है कि 18 में बताया गया कि ज्ञान और वैराग्य करके ज्ञान पर वैराग्य करने के बाद जो है भक्ति शुरू होती है।
नहीं, आप गलत सोच रहे।
19 में फिर ये बताया कि भक्ति करने से ही ज्ञान और वैराग्य,
उधर भी ऐसे नहीं बताया है।
स्टार्ट 18 में।
हाँ, क्या है?
डिवोशनल सर्विस बिगन्स ओनली आफ्टर अटेनमेंट ऑफ वैराग्य which comes from knowledge. Beginning of devotional service is after attainment of vairagya. और उन्नीस में बताया कि वैराग्य मिलेगा आपको तब जब डिवोशनल सर्विस करोगे।
उसमें मिलेगा नहीं, उसमें आप शब्द को पढ़िए क्या लिखा है।
19
में नॉलेज और नेवर परफेक्ट,
नेवर परफेक्ट,
वहाँ परफेक्शन नहीं, भक्ति के बगैर उनमें परफेक्शन नहीं आएगी।
पर दोनों सूरतों में ज्ञान और वैराग्य क्वालिफिकेशन नेसेसरी है, दोनों।
इसलिए हमने पहले कथा में कह दिया,
भक्ति करोगे भक्ति तो परफेक्शन आएगा, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य करने के बाद 18 में कह दिया कि ज्ञान और वैराग्य प्राप्त होने के बाद बिगिनिंग ऑफ डिवोशन।
नहीं नहीं,
भक्ति का इंडिपेंडेंट हम ले
है, नहीं यहाँ लिखा है परफेक्शन उसके बगैर नहीं आएगी जब तक वो भक्ति से नहीं जोड़ेंगे। वो अगर स्वतंत्र रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। नहीं, ज्ञान और वैराग्य बाय प्रोडक्ट है भक्ति का।
भक्ति का
इसका दूसरा दूसरी भाषा में इसको ऐसे कहा जाए, अकेला ज्ञान और वैराग अपने आप में हमको सिद्धि नहीं दे सकते हैं जब तक उसके साथ भक्ति नहीं मिलाई जाएगी, और भक्ति के ज्ञान वैराग अपने आप उसमें समाये हुए इन बिल्ट हैं, इसलिए भक्ति के लिए अलग उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसकी इसका अर्थ ये हुआ, कुछ लोग ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, अगर वो भक्ति का अनुसरण नहीं करेंगे तो ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। कुछ लोग वैराग के मार्ग में चलते हैं, योग के मार्ग में चलते हैं, लेकिन अगर भक्ति का अंश उसमें नहीं आया तो उनको भी सिद्धि नहीं मिलेगी। उन दोनों की सिद्धि के लिए भक्ति का होना जरूरी है, लेकिन भक्ति के लिए किसी चीज का जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में स्वतंत्र है। तो क्या ज्ञान और वैराग कहां है भक्ति में? बोला उसके अंदर इनबिल्ट है, क्योंकि उसी के अंदर जुड़े हुए हैं, उसके बच्चे हैं, वो उसी के अंदर, जैसे बच्चा हमारे अंदर ही होता है ऐसे वो उसी के अंदर पड़े हैं। जैसे भक्त का अभ्यास करेंगे ये दोनों अपने आप जागृत हो जाएंगे, उनको जागृत अलग करने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ ये
प्रेम ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमें उसके प्रति पहले जब ज्ञान हो जाता है तो प्यार ज्यादा बढ़ता है, तो भक्ति की जो स्पीड है वो ज्यादा बढ़ जाती है।
असल में क्या है, वो भक्ति है हेलीकॉप्टर जैसे, उसमें पहिए होते ही नहीं, और ज्ञान और वैराग है पहिए। आपका कहना है पहिए से तेज चलेगा, लेकिन ये तो उड़ने वाला है, बगैर पहिए के भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपको भागना है तो पहिए चाहिए। कुछ हेलीकॉप्टर ऐसे होते हैं जिसमें पहिए भी हैं, आजकल बड़े वाले लंबे वाले हैं, पहिए वाले भी होते हैं। लैंडिंग में काम, उड़ने के लिए नहीं, उतरने के लिए बड़ा होता है इसलिए। हाँ जी, क्या लिखा आप, क्या कह रहे हैं, क्या लिखा है?
प्रभा जी लिखे, डिवोशन सर्विस इटसेल्फ इज सो पावरफुल दैट बाय वंस सर्विस एटीट्यूड एवरीथिंग इज रिवील्ड।
वो इसका ज्ञान वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा,
आएगा जरूर,
अपने आप आ जाएगा, उसको लिए अलग प्रयास करने की जरूरत नहीं है।
ज्ञान के साथ सेवा की जाती है तो उसका प्रोसेस बड़ा फास्ट हो जाता है,
इसीलिए
के साथ जब सेवा की जाती है तो उसका अपना उसका
बहुत अच्छी बात है। इसलिए भगवत गीता में पहले भगवान ने आत्म तत्व बताया, फिर आत्मा के दो स्वधर्म बताए, एक शरीर का स्वधर्म, एक आत्मा का स्वधर्म। फिर शरीर के धर्म में बताया कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, लेकिन फिर बताया युद्ध करना है तो बुद्धि योग में स्थिर होकर युद्ध करो। बुद्धि योग में स्थिर होकर करना मतलब बुद्धि ज्ञान बुद्धि से लिया जाता है, तो काम करो तो सोच समझ के करो, जानबूझ के ऐसे नहीं, तो काम बंधन का कारण बन जाएगा। तो वहां भी यही दो चीजें हैं कि शरीर से काम करना है लेकिन आत्मा के स्वरूप को नहीं। शरीर का अलग अलग सबका काम है, ये ज्ञान तो बाजार से मिलता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मिलता है, लेकिन आत्मा का जो धर्म है वो सबका एक है, वो है सेवा करना। जब तक ज्ञान आत्मा, ये आत्मा आत्मा है ज्ञानमय, लेकिन वो ज्ञान आत्मा का प्रकट होगा जब भक्ति करेंगे। अलग ज्ञान का अभ्यास करेंगे तो बगैर भक्ति के सिद्धि नहीं होगी, उसमें परफेक्शन नहीं होगी। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति परिपूर्ण है।
अपने जैसे कहा डिवोशनल सर्विस जो है वो बड़ी ऊंची है, बिल्कुल ठीक है आपने, लेकिन हम जो डिवोशनल सर्विस और लोगों से करते हैं ये विचार के सब में आत्मा है, ज्ञान हमको है कि सब में आत्मा है और ईश्वर उसे प्रसन्न होंगे हम जब सेवा करेंगे, तो वही जो सर्विस है उसका और भी ज्यादा बेनिफिट
होगा। भाई सब में आत्मा है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब भगवान नहीं है।
नहीं भगवान नहीं है,
नहीं सब में आत्मा है और सभी भगवान के अंश हैं, इसलिए हम एक दूसरे का सहयोग करें, ये सेवा करें, ये अच्छी बात है।
आपने जो श्लोक अभी बताया था वासुदेव भगवती
भक्ति भक्ति योग प्रयोजित अपने आप आइए, अपने आप आई तो किए अपने आप प्रकट होगा, उसमें अलग प्रयास नहीं है।
डिवोशनल सर्विस के जो नौ अंग बताए हैं, यहाँ हम जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, ये ज्ञान की बात कर रहे हैं आत्मा और शरीर का भेदन, वो ज्ञान की बात कर रहे हैं। वाली जिसकी ज्ञान की बात नहीं है, मटेरियल ज्ञान की नहीं, मतलब आत्मा और शरीर की ज्ञान की बात कर रहे हैं।
अभी जो अभी तक जो प्रवचन चल रहा है ये आत्मा के क्या साक्षात्कार का चल रहा है?
मतलब मेरे थॉट थी माइंड में कि डिवोशनल सर्विस तो नौ प्रकार की बताई है, तो उसमें तो ज्ञान भी तो उसका पार्ट है। जो हम भगवत भागवत की जो रीडिंग बताई है, रीडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भागवत का अध्ययन करना भी है।
वो पांच अंग भक्ति की बात कर रहे हैं। पंच अंग भक्ति में भागवत का अध्ययन करना चाहिए। वो शुद्ध भक्ति, पराभक्ति।
लेकिन जब सब्जेक्ट डिस्कशन का हमारा जैसे अभी बात हो रही है, वो सिर्फ इस स्तर पे है अभी।
अभी हमारा जो कार्य चल रहा है ये भक्ति के मार्ग में हम चल रहे हैं। अभी न इतना हमारा ज्ञान जागृत हुआ है, न वैराग जागृत हुआ है, लेकिन हम उस प्रोसेस में, पथ में, हम शिव पथ पे हैं। पथ हमारा शिव है, मंगलकारी पथ के ऊपर चले हैं, लेकिन अभी हमारे को मंजिल प्राप्त नहीं हुई। तो अभी हम भक्ति जो कर रहे हैं ये असल में गुणों से अभिभावित भक्ति कर रहे हैं। जैसे हम कल पढ़ के आए थे ना, तीन गुणों के प्रभाव वाले भक्त होते हैं, तो मिश्र उस स्तर का काम चल रहा है। अभी तक शुद्ध स्तर आया नहीं है। वो स्तर आएगा तो उदासीनता का पद आ जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। ज्ञान आवश्यक अपने आप में भक्ति के लिए नहीं है। आपको उदाहरण दिया था, गौर किशोरदास बाबा जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बहुत बड़े भक्ति सिद्धांत विद्वान थे अपने समय के। लेकिन फिर भी उनकी भक्ति के कारण उनके पास दिव्य ज्ञान ऐसा था कि इतने बड़े पंडित ने उसका शरण ले लिया। तो भक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता, बाहर के ज्ञान की किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। वो अंदर से प्रकाश जो हो जाता है वो ज्ञान परिपूर्ण है। आगे का अब प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषो कृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। मोक्षद्वारम अपावृतम, अपावृतम मतलब खोल देता है, मोक्ष का द्वार दरवाजे खोल देता है। कौन मोक्ष के दरवाजे खोल देता है? साधुषु कृतो। साधुषु का मतलब भगवान के भक्त, साधु। अब साधु की परिभाषा क्या है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अब ये कहा गया कि इतनी देर सब जो कर रहे हैं, आपको ज्ञान चाहिए, आपको वैराग चाहिए, आपको भक्ति चाहिए, ये सब बातें थी जब तक सब कवियों विदुहु, जो बुद्धिमान है। कवि का मतलब होता है जो जानकार हैं, जो मुनि हैं, जो ऋषि हैं, जो पंडित हैं, वो सब विदु, वो जानते हैं। क्या बात जानते हैं? कि जब तक साधु का संग नहीं होगा तब तक मोक्ष के द्वार खुलेंगे नहीं। लेकिन साधु का संग होने से पहले किस बात की कहते हैं संत? प्रसंगम अजरम पाशम। प्रसंगम, प्रसंग का मतलब प्रकृष्टेन रूपेन संगम। जो पूर्ण रूप से हमने संसार को पकड़ के रखा है, किससे पकड़ा हुआ है? अजरम, जर कहते हैं बुढ़ापे को, वैसे जर कहते हैं जो टूट जाए। अजरम का मतलब नहीं टूटने वाला। तो ये प्रकृति के तीन गुणों के रसों से हम जो बंधे हुए हैं संसार में, ये जो पहला शब्द है प्रसंगम का मतलब प्रकृति के तीन गुण जिनसे हम अटैच बंधे हुए हैं। अजरम पाशम, पाशम का मतलब रस है। बुढ़ापा नहीं है, मैं जरा का अर्थ बुढ़ा पाए, इसका मतलब जो टूटे, अजरम का मतलब जो न टूटने वाला। एक शब्द जो है उसके अंदर वो दिखाई दे रहा है कि ये कभी कमजोर होने वाला नहीं है, प्रकृति के गुण। जब तक इसका अर्थ ये है आत्मनि, जो अपने आप को तीनों प्रकृति के गुणों के शक्तिशाली रसों से छुड़ा नहीं सकता, उसके लिए मोक्ष के द्वार नहीं खुलते हैं। तो कौन छुड़ाएगा? बोला साधु। साधु छुड़ाएगा। कैसे छुड़ाएगा? क्योंकि वो खुला हुआ है, खोल देगा। तो अब यहां मुख्य बात क्या आ गई कपिल देव की शिक्षा में? माता जी, जब तक साधु का संग नहीं होगा तब तक ये सब सफलता संभव नहीं। साधु के संग के बगैर ये सब सफलता संभव नहीं है। साधु शुक्रतो, कवि लिखा है, कवि लर्नेड मैन, विदु, जानते हैं अच्छी तरह से अटैचमेंट टू द मटेरियल, वो प्रसंगम अजरम श्लोक में जो है आत्मा। अब यहां एक बार अच्छी बात लिखी, वही आसक्ति जो अभी संसार में है उसी को अगर साधु की तरफ मोड़ दे तो मुक्ति का द्वार खोल देगा। तो वही आसक्ति साधु की तरफ मोड़नी है। अब साधु कौन है? प्रभुपाल दूसरा साधु के लिए बोला, महात्मा को भी साधु कहते हैं। तो महात्मा कौन है, साधु कौन है? अभी वो साधु को ढूंढो। अब साधु भगवत गीता से एक साधु की परिभाषा का कोई श्लोक बताओ। महात्मा वाले हैं, साधु का कोई है? संत नहीं, वहां संत है, साधु नहीं है, संत है। संत चेत सुधा भजते माम अनुभाग साधु रेव समन्तव्य क्षिप्रम। यहाँ है शेष में लिखा है नीचे, क्योंकि उसकी निश्चित भक्ति के ऊपर इसका निश्चय है कि वो साधु है। अब देखिए ये उदाहरण अजी ऐसे साधु का है जो पापी भी है फिर भी वो साधु है, क्योंकि उसने जान लिया है कि भगवान को ही पाना है और बीच में कहीं नहीं अटकना है। निश्चय यह है कि भगवान को जानता है इसलिए साधु। और महात्मा करके कहेंगे तो महात्मा कौन है? साधु की परिभाषा होगा सततम कीर्तन यंतो माम, जो सदा भगवान की कीर्ति गाता रहता है, दृढ़ व्रत है, जिसके जीवन में चार नियम पालन का दृढ़ व्रत किया हुआ है। नमस्यंतस्य माम भक्त्या, मेरे को नमस्कार करता है। नित्य युक्त उपास, नित्य मेरी सेवा में लगा होता है। महात्मानस्तु पाम पार देवीं प्रकृति माश्रिता, भजते अनन्य मनसो, अनन्य मन से निरंतर मेरा भजन करते हैं। तो ऐसी साधु की परिभाषा है। तो साधु कौन है ये बहुत बड़ा विषय है अपने आप में। साधु कौन है? बात तो कह दिया साधु के संग से ये हमारे को हमारा सौभाग्य होगा, लेकिन साधु कौन है ये प्रश्न बहुत बड़ा गंभीर है। आसक्ति तो दुनिया में रहेगी, इसका अर्थ है कि आसक्ति भी खत्म नहीं होगी। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि आसक्ति छोड़ दो, यह भी संभव नहीं है। आसक्ति को छोड़ मत दो, मोड़ दो, उसका रुख बदल दो, उसकी दिशा बदल दो। अब आसक्ति है भोग विलास में, संसार में, परिवार में, पैसे में, उसी आसक्ति को हरि जन में, हरि कथा में, हरि कीर्तन में और हरि की तरफ मोड़ दो बस। अब ये काम वैसे बहुत बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन देखा इतनी बड़ी ट्रेन आती है उसको एक पटरी से उतार के दूसरी में रखने के लिए कितनी क्रेन चाहिए, आसान नहीं है। लेकिन एक आदमी एक बटन दबाता है या एक लीवर खींचता है तो एक लाइन से दूसरी लाइन में ट्रेन चली जाती। तो असल में साधु क्या करता है? कुछ नहीं करता है, एक खास बटन दबाता है उससे होता क्या है, हम जो ऐसे संसार की तरफ जा रहे हैं वो बटन दबाने का हमारा लाइन बदल जाता है, हाँ, जो पहले जो जा रही थी, पहले जो लाइन जा रही थी दिल्ली की तरफ, जो दिल्ली की तरफ जो लाइन जा रही थी उसको वृंदावन की तरफ मोड़ दिया, बस इतना ही, कुछ नहीं, रास्ता बदल दिया और कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक बटन को दबाना है, इतना आंतरिक लीवर है, इतना जो भी है उससे काम चल जाता है, बहुत आसान काम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल के उदाहरण को फिर लें कि माया किसने पैदा की, भगवान ने, जैसे सूर्य ने बादल पैदा किए, फिर उस सूर्य ने भगवान को, उस बादल ने सूर्य को नहीं ढका, उस माया ने भगवान को नहीं ढका, उस माया ने हमको ढका, यहां तक तो ठीक है, अब इस बादलों को हटाए कौन वहां से ताकि हम सूर्य को देखें, हवा हटाएगी, ऐसे भगवान के भक्त हवा की तरह आएंगे और आपको वहां से ये हटा देंगे तो सूर्य दिखेगा, या तो बादलों को हटाएं या तो आपको हेलीकॉप्टर में ऊपर ले जाएं बादलों से, दोनों मार्गों से वही इनसे खा, अपने आप नहीं कर सकते हैं, बादलों को हम नहीं हटा सकते, लेकिन वो दो प्रकार से कर सकता है, या तो ऐसे अच्छी हवा, किसको उदाहरण दिया है भागवत में, शास्त्र को, शास्त्र नेविगेशन के लिए फेवरेबल विंड है और गुरु जो है वो कैप्टन है, अब आप ऐसे समझो मौसम खराब जो है, मौसम अच्छी कर दे और ऊपर उठा के ले जाए तो बादलों से ऊपर चले जाएंगे, तो अब आवश्यकता पड़ गई एक जीवित आदमी की जो हमारे को खुला हुआ हो और हमारे को खोल सके, तो इसके परपड़ को देखो, यहां विराम देते हैं कथा को, लंबा पर पड़े हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या क्या लिखते हैं,
इवन दो वन इज फाउंड नॉट टू बी फॉलोइंग द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ डिवोशन सर्विस, इवन सिंपली हैज अनफ्लिंचिंग फेथ इन कृष्णा, ही इज अंडरस्टूड टू बी अ सेंट।
वो उसी का जो उसी का परिभाषा है ना, अपिचेत सुदर्जा भजते माम साधु, उसी की परिभाषा ये है। ये हमारी स्थिति है कि अभी हम अच्छी तरह से जो है वैराग हमारे अंदर नहीं आया है, अभी हमारे को पूरा ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इतना हमने मान लिया है कि प्रभुपाद के दिखा हुआ मार्ग जो है ये शिव पथ है, और ये जो शास्त्र है इसका अध्ययन करेंगे भक्तों के संग में तो निश्चित रूप से कृष्ण भगवान है वो उसको पाना है, तो ये हमारा जो निर्णय पक्का हो चुका है कि ये शिव पथ है, ये मंगलकारी रास्ता हमने पकड़ लिया है, ये भक्ति का मार्ग है, उसका कैप्टन प्रभुपाद जी ऐसे हैं कि वो हमको पार उतार लेंगे, और अभी हम तैयार नहीं है लेकिन रास्ता अच्छा है, इस रास्ते में कोई खतरा नहीं है, अब हम कितना तीव्र चलते हैं ये हमारे अपने प्रयास के ऊपर। हरे कृष्ण। हाँ जी,
कैप्टन के ऊपर विश्वास होना
चाहिए, तो सो जाते हैं कैप्टन के, ये ड्राइवर के ऊपर भी विश्वास करके बैठ जाते हैं कैप्टन, तो बड़ी बात है। क्या प्रश्न है आपका भाई रसा?
साधु संघ आपने बताया, एक्चुअल में साधु संघ है क्या?
वही तो बहुत बड़ा सही, पूरे इसके आगे है ही साधु संघ, असल में साधु
संघ
बहुत बड़ा भारी विषय है। हरे कृष्णा।